te Vasudevaya. Om namo bhagavate Vasudevaya. Om namo bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavad Gita Yatha Rup Anuvad. Sanskrit se Angrezi or Tatpaya. Sri Srimad A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada ke Dwara. Bhagavad Gita Adhyay 3 Shlok Sankhya 33. Sadrisham Cheshtate Svasyaha Prakritehe Jnanavan Api Prakritim Yanti Bhutani Nigraha Kim Karishyati Sadrisham Cheshtate Svasyaha Prakriter jnanavanapi Prakritim yanti bhutani Nigraha kim karishyati Sadrisham cheshtate svasya Prakriti jnanavanapi Prakriti jnanti bhutani Nigraha king karishyati Sadrisham cheshtate svasya Prakriti jnanavanapi Prakritim yanti bhutani Nigraha kim karishyati Shloka Anuvad Jnani Purush bhi apni prakriti ke anusar karya karta hai kyunki sabhi prani tinon gunon se prapt apni prakriti ka hi anusaran karte hain. Bhala dhaman se kya ho sakta hai? Tatparya, Krishna bhavanamrit ke divya pad par sthit huye bina prakriti ke gunon ke prabhav se mukt nahi hua ja sakta. Jaisa ki swayam bhagavan ne sadve adhyay mein kaha hai. अतः सांसारिक धरातल पर बड़े से बड़े शिक्षित व्यक्ति के लिए केवल सैद्धांतिक ज्ञान से आत्मा को शरीर से पृथक करके माया के बंधन से निकाल पाना असंभव है. ऐसे अनेक तथाकथित आध्यात्मिकवादी है जो अपने को विज्ञान में बड़ा छड़ा मानते हैं, किंतु भीतर भीतर वे पूर्णतया प्रकृति के गुणों के अधीन रहते हैं जिन्हें जीत पाना कठिन है. ज्ञान की दृष्टि से कोई कितना ही विद्वान क्यों न हो, किंतु भौतिक प्रकृति की दीर्घकालीन संगति के कारण वह बंधन में रहते हैं. कृष्ण भावनामृत उसे भौतिक बंधन से छूटने में सहायक होता है, भले ही कोई अपने नियत कर्मों के करने में संलग्न क्यों न रहे. अतः पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हुए बिना नियत कर्मों का परित्याग नहीं करना चाहिए. किसी को भी सहसा अपने नियत कर्म त्याग कर तथा कथित योगी या कृत्रिम आध्यात्मिकवादी नहीं बन जाना चाहिए। अच्छा तो यह होगा कि यथा स्थिति में रहकर श्रेष्ठ प्रशिक्षण के अंतर्गत कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाए। इस प्रकार कृष्ण की माया के बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है, निग्रह किम करिष्यति। सामान्यतः जो हिंदू धर्म का नाम से चलता है वो उसमें वो साधु शब्द जो है उससे लोग तो क्या सोचे, साधु कौन है, जो ज्ञानी योगी ध्यानी। और यदि कोई आध्यात्मिक पथ पर जाना चाहते हैं तो सामान्यतः ऐसा लग रहा है कि वो ध्यान करते हैं। और ध्यान क्या है, तो ऐसे बैठते हैं और मन से सब चिंतन निकाल देते हैं और मन में क्या रहते ही कुछ नहीं, मन एकदम शून्य बनाना है। कोई ऐसा प्रयास किया उस प्रकार ध्यान करना, सभी चिंतन जो हमेशा मन में आते है सब बंद करना, कोई ऐसा प्रयास किया? नहीं, कोई नहीं लगते तो सब कम से कम एक बार प्रयास किया नहीं। हाँ, और उससे क्या फल मिला? तो एक क्षण में भी चिंतन का प्रवाह बंद करना संभव नहीं है। जैसे कल या परसों बताया कि वो जीवन जीवित होना वो शब्द क्या है, अभियोज्य अभियोज्य कामना से, और चिंतन का स्रोत वैसे प्रवाह हमेशा मन में आता है, उसको बंद करना संभव नहीं है। और एक सेकंड में अगर हम बंद करेंगे फिर हम सोचेंगे और बंद कर दिया था, वो भी एक सोच है। निग्रह किम करिष्यति, निग्रह का मतलब बलात्कार से प्रकृति को दमन करना या मन को दमन करना। तो कृष्ण भक्ति में मन का नियंत्रण करना दूसरा प्रकार की रीति है। मन दमन करने का क्या जरूरत है, जरूरत है कि क्योंकि मन में सदैव कुछ ना कुछ चिंतन आते रहते हैं। और यदि हम मन को दमन नहीं करते किस प्रकार का चिंतन आएगा, अमंगल चिंतन, कैसे इस प्रकार का चिंतन, तो कैसे हम इंद्रिय, मन क्या है, मन तो सब इंद्रियों के केंद्र है, नहीं इंद्रियों के राजा, और मन और इंद्रियों का संलग्न युक्ति होती है। तो मन सदैव चाहते हैं इंद्रियों इंद्रियों के की विषय को भोग करेगा और वो विषय इंद्रिय सुख तो मन नहीं भोगते नहीं इंद्रिय सुख जैसे अंगुल तो किसी रम्य चीज को स्पर्श करना भौतिक संसार में सबसे बड़ा इंद्रिय सुख है स्त्री पुरुष का संगम तो वो इंद्रिय सुख जो मैथुन सुख जो है वो त्वच में से होते हैं नहीं हाँ लेकिन सुख मन में अनुभव होते है और जीभ का सुख क्या है जलेबी हलवा ऐसा चीज खाना लेकिन सुख कहाँ है सुख तो जीभ पर नहीं आते मन में और इस प्रकार सभी प्रकार का इंद्रिय सुख मन भोगते है परंतु वो सब सुख प्राप्त करके भी मन तो कभी भी सुखी नहीं होते अशंतास्य कुता सुखम गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं जिनके मन अशांत है तो ऐसे व्यक्ति के लिए सुख प्राप्ति का क्या सवाल है नहीं है संभव नहीं है परंतु मन का स्वभाव है अशांत रहना क्योंकि सदैव मन में बहुत बहुत चिंता आते हैं और प्रचुर इंद्रिय सुख भोगने के बीच में भी मन असंतुष्ट होते क्योंकि और दूसरे प्रकार का इंद्रिय सुख का चिंतन करते हैं और इस प्रकार मन सदैव असंतुष्ट रहते हैं तो इसलिए ऐसा जो योगी ज्ञानी वो उनका प्रयास है चेष्टा ये चेष्टा शब्द आता है ये श्लोक में उनकी चेष्टा है मन को दमन करने क्योंकि वो ऐसे योगी आन तो समझ गए कि मन असंतुष्टि का कारण है असंतोष रहते क्यों क्योंकि सदैव मन में भिन्न भिन्न इच्छाएं आते हैं विशेषकर ये बुद्ध देव का शिक्षण है कि जगत दुखमय है और बुद्ध देव के पहले भगवान कृष्ण और भगवान कृष्ण के कुरुक्षेत्र में बताने को अर्जुन को बताने के पहले तो उपनिषदों में ये सब आते है कि जगत दुखमय है तो बुद्ध देव बोलते थे कि मैं खुद विचार विमर्श करके सिद्धांत निष्कर्षण किया कि जगत दुखमय है तो शास्त्र में है और वास्तव में यदि कोई बुद्धिमान व्यक्ति जगत की परिस्थिति विचार करेंगे तो सिद्धांत निष्कर्ष करेंगे कि जगत दुखमय है और बुद्ध देव और भी विश्लेषण किया कि दुख का मूल कारण क्या है काम भौतिक कामना तो बुद्ध देव का विचार है कि काम बिल्कुल निकालना दमन करना और जिससे मन में कुछ भी इच्छा नहीं रहेगी वैसे ध्यान करना है जो संभव नहीं है और इसलिए बौद्ध धर्म में कुछ विचित्र ध्यान होते हैं जेन बुद्धिज्म में कस जैसे किस विषय के ऊपर ध्यान करना हाथ से थाली बजाना एक हाथ से एक ऐसे ध्यान होते कैसे एक हाथ से हाथी हाथ से थाली बजाना संभव नहीं है. दो हाथ से होते, एक हाथ से नहीं होते. इस प्रकार का ध्यान होते क्योंकि 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 क्या क्या बुद्ध बहुत विचित्र है, ऐसा है क्योंकि वो जो जिसलिए भाई चेष्टा करते मन को एकदम शून्य बनाना तो संभव नहीं है. और वैदिक हिंदू धर्म में उसी प्रकार का ध्यान होते है तो ऐसे मन को खाली करने की चेष्टा होती है. और श्रील प्रभुपाद कहीं बार बोले कि उससे क्या होते है उस प्रकार का ध्यान अच्छी नींद आती है. ऐसा ध्यान अच्छा है लोग जो बहुत तनाव के बीच में है तो ऐसे ध्यान करो. और उसे लोग जिनकी नींद तो बार बार बिगड़ जाते हैं तो उनके लिए उस प्रकार ध्यान करना है तो फिर कम से कम 5 मिनट तो गहरी नींद मिलेगी. लेकिन वो ध्यान जो शास्त्र में बताया गया है ध्यान उसलिए नहीं है. ध्यान अवस्थित थद गते न मनसा पश्यन्ति यम योगे न यस्यान्तम न विदु सुरासुना गुणा देवाय तस्मै नमः. देव देव भगवान कृष्ण के ऊपर ध्यान करना चाहिए. और ये अलग ढंग का ध्यान है जैसे मन को खाली करने का प्रयास होते. लेकिन अगर हम ऐसे कहते ध्यान हो ध्यान मैं ध्यान करता हूँ तो लोग क्या सोचते ध्यान तो ऐसे मन खाली करना. वो कुछ लोग जाते नहीं विपासना, विपासना बुद्ध धर्म का विपासना होते जिसका अर्थ है ऐसा ध्यान करना अच्छा है, रिलैक्स करने के लिए अच्छा है. लेकिन आध्यात्मिक लाभ उससे कुछ भी नहीं होता है क्योंकि वो संभव नहीं है. मन को पूरा दमन करना या खाली करना संभव नहीं है. मन में सदैव कुछ ना कुछ चिंतन आते रहते हैं. तो इसलिए भक्ति योग में मन का दमन करने के लिए बिल्कुल अलग प्रकार की चेष्टा होती है. मन का दमन करना वैसे ही प्रयास नहीं होते क्योंकि बलपूर्वक से मन का दमन करना तो संभव नहीं है. कैसे संभव होगा? तो सब कुछ जो हम करते हैं तो मन में से हम करते हैं, नहीं? पहले हम सोचते हैं मुझे ऐसा करना थिंकिंग फीलिंग विलिंग, फिर हम कुछ सोचते कैसे करना, फिर हम करते. तो सभी प्रकार की चेष्टा के स्रोत है मन. तो यदि हम प्रयास करेंगे मन को खाली करना तो हम कैसे करेंगे? मन के द्वारा. तो मन तो कैसे अपने को दमन करेगा? तो संभव नहीं है. तो भक्ति योग में मन का शुद्धिकरण वो प्रयास है. मन में अलग अलग चिंतन इच्छाएं आ जाएगी, उसको बंद करना संभव नहीं है. परंतु वो सभी कामनाएं जो मन में आते हैं वो सबों को शुद्ध बनाना चाहिए. तो कैसे शुद्ध, कैसे शुद्ध होगा? तो सब कुछ भौतिक संसार में अशुद्ध है और वो इच्छा मन खाली करवाना वो भी अशुद्ध है. शुद्ध है कृष्ण। यदि हम कृष्ण कृष्ण को केंद्र बिंदु करके हम ध्यान करेंगे तो मन शुद्ध हो जाएगा। तो कैसे हम ध्यान करेंगे? तो कृष्ण भक्ति में वो प्रथा जो है वो व्यवहारिक है। तो मन से हम कहते हैं, क्या कहते हैं, हम इंद्रियों में से सुख मिलना चाहते हैं और वैदिक वैदिक रीति के अनुसार दो प्रकार के इंद्रिय है। एक है ज्ञान इंद्रिय, जिससे हम सब कुछ जो है हम अनुभव करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, स्वाद लेते हैं इत्यादि, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं। और काम इंद्रिय भी है, जिससे हम काम करते हैं, पायों से हम अलग अलग जगह जाते हैं, हाथों से हम कार्य करते हैं, जीभ से हम बात बोलते हैं। तो ये सब काम इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा करने चाहिए और इस प्रकार मन शुद्ध होते, क्योंकि भगवान की सेवा भगवान जैसे शुद्ध है। तो इसके बारे में भक्ति योग और भक्ति शुद्ध भक्ति का वर्णन है। इह यस्य हरे दास्यै कर्मणा मनसा गिरा निखिलस्याप्यवस्थासु जीवन मुक्तस्य उच्यते। जो ध्यानी है, योगी है, क्यों ध्यान और योग करते हैं? जिससे वे मुक्त होंगे, मुक्त होंगे भौतिक संसार से। और बंधन का क्या 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 कारण है? भौतिक इच्छाएं। इसलिए वे प्रयास करते हैं मन से सब इच्छाएं निकालना। और वैष्णव विधि है जीवन मुक्त होने के लिए। कैसे भक्तों मुक्ति मिलती है? एहा यस्य, एहा शब्द का अर्थ यहा, विशेषकर ये भौतिक संसार में। यह यस्य हरेर दास्य, जो हरि भगवान की सेवा करते, कर्मणा मनसा गिरा, तो काम करते हैं भगवान की सेवा, मन भी लगाते भगवान की सेवा में, और गिरा वचन, तो सब हरि सेवा में लगाते हैं। अर्थात हरि सेवा के बिना कोई दूसरा चिंतन नहीं करते। वो सब कुछ जो हम करते पहले हम उसके बारे में चिंतन करते, और यदि हम संकल्प करते हैं कि हरि सेवा के बिना हम और कुछ भी नहीं करेंगे, तो इस प्रकार मन का दमन होते। फिर उसके अनुसार काम जो हम कहते हैं वो हरि सेवा तो होगी, और जो हम कहते हैं वो हरि सेवा में होगी। इस प्रकार हम जीवन मुक्त होते। अर्थात यही भौतिक संसार में रहकर का समय भी हम मुक्त होते। मुक्ति शब्द का क्या अर्थ है? तो बंधन से मुक्त। वो बंधन क्या है? तीन गुणों के द्वारा। तीन गुण का मतलब सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, जिनके विस्तृत वर्णन है गीता में और श्रीमद् भागवत में और अनन्य शास्त्रों में, विशेषकर संख्य योग में। ये तीन गुणों का प्रभाव का वर्णन है। गुण शब्द का एक और अर्थ है राशि। तो तीन गुणों से ये राशि से हम बद्ध है भौतिक संसार में, परंतु हरि भक्ति से हम तीन गुणों का प्रभाव से अतीत हो सकते। मांग छे अभिचार है ना, भक्ति योग सेवते सगुणान समतीत्यायतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं मांग चयो व्यभिचारेण, जो अव्यभिचारिणी भक्ति करते है मुझे। अव्यभिचारिणी शब्द का अर्थ है अहैतुकी अप्रतिहता, जो सदैव मेरी सेवा में कृष्ण भक्ति में नियुक्त है। मांग चयो व्यभि भक्ति योगे न सेवते, कृष्ण की सेवा करते भक्ति से, तो वो प्रयास करने से सगुणान समतीत्यायतन पूरी तरह गुणों का प्रभाव से अतीत होते और ब्रह्म भूया और ब्रह्म स्थिति पर अधिष्ठित होते। जो निर्विशेषवादी ध्यानी योगी जो मुक्त होने चाहते वो ब्रह्मभूत होने चाहते, ब्रह्मलीन होने चाहते, उनका ऐसे विचार है या सिद्धांत है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूं और ध्यान से मैं ब्रह्म ब्रह्म परम सत्य में लीन हूंगा, ब्रह्म ज्योति में। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरी सेवा करने से भक्तों आसानी से कुछ कष्ट ग्रहण नहीं करके ब्रह्मभूत होते। तो साधारण दृष्टि में भक्तों तो साधारण लोग जैसे है, आध्यात्मिकवादी नहीं है, क्योंकि वो गलत फहमे है कि आध्यात्मिकवादी तो सभी प्रकार काम छोड़कर एक जगह में बैठ के खाली ध्यान करते हैं। वो अर्जुन भी वो गलत फहमे से प्रभावित है कि मुझे लड़ाई छोड़ना है और ऐसे मैं आध्यात्मिक होऊंगा। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को बताए कि हाँ ऐसे योगी बनना अच्छा प्रस्ताव है, तो ऐसे योगी बन जाओ अर्जुन। तो तलवार लेके और विशेषकर वो बाण लेके तो सब शत्रु को वध करो, ऐसे योग योगी बन जाओ। माम अनुस्मर अयोध्या, ये अर्जुन के लिए भक्ति योग था, सबके लिए नहीं है क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय थे और इनके लिए वो उनका धर्म था। बात यही है कि वो काम जो हम करते हैं हमें कृष्ण भावना में करने चाहिए। तो चाहे भी आप क्षत्रिय हो, आजकल क्षत्रिय कोई नहीं, क्षत्रिय आजकल का मतलब क्या है, तो एक कमरे में बैठ के बटन दबते हैं और उससे वो एक रॉकेट ऊपर जाते हैं और हजार लोग तो ऐसे ही वध करते हैं। उसमें क्या शौर्य क्या वीर क्या है, कुछ नहीं। तो स्वकाम करके कृष्ण का स्मरण करना चाहिए और कृष्ण की प्रीति की हेतु से काम करना है। तो साधारण कर्मी जन और शुद्ध भक्त जन तो लगभग एक ही जैसे दिखते, जैसे श्रील प्रभुपाद वो समय निवृत्त संसारिक जीवन से निवृत्त होने के पश्चात और अमेरिका जाने के पहले श्रील प्रभुपाद वृंदावन में वास किए थे, लेकिन बहुत अप डाउन किए थे आना जाना दिल्ली, वृंदावन से दिल्ली। तो जो व्रजवास कहते हैं तो दिल्ली नहीं जाते, वृंदावन में और दिल्ली में वो वातावरण तो बिल्कुल अलग है ना। वृंदावन में वातावरण है कृष्ण भक्तिमय और दिल्ली में विपरीत। तो श्रील प्रभुपाद बार बार दिल्ली गए थे और दाताओं से दान मांगते थे और कागज खरीद लिया और ऐसे इनका बैक टू गॉड पत्रिका निकले और एक बैक टू गॉड प्रबंध में श्रील प्रभुपाद ने लिखे कि कुछ लोग मुझको निंदा करते कि मैं साधु बन गया हूं और मैं ब्रजवास करता हूं, परंतु मैं बार बार दिल्ली जाता हूं और अभी तक व्यापार करता हूं और कागज खरीद लेता हूं और कागज वाला से वो ऐसे बात करते विनय दाम कमाने के लिए और फिर उस वो पत्रिका लेके बाजार में जाता हूं उसको बिकने के लिए। तो कुछ लोग ऐसे बोलते श्रील प्रभुपाद एक प्रबंध में लिखते थे कि किस प्रकार का साधु, इसका स्वभाव है व्यापार करना लेकिन निवृत्त होने के पश्चात ब्रजवास करने में तो वो सब छोड़ना पड़ेगा। श्रील प्रभुपाद ऐसे लिखते है कि ये मेरी भक्ति है, भक्जन तो संसार से पूरा निवृत्त नहीं होने चाहिए, प्रवृत्त होने चाहिए कैसे, कृष्ण भगवान की सेवा में। और ऐसे भगवान का स्मरण आते हैं आपने आप, यदि हम व्यस्त रहते भगवान की सेवा में तो भगवान का स्मरण अपने आप मन नहीं आएगा। यदि हम सभी प्रकार का प्रयास करते केवल भगवान की प्रीति के लिए तो भगवान की प्रीति तो मन नहीं आएगी। और विशेषकर आधुनिक युग में इस प्रकार भक्ति योग करना श्रेष्ठ उपाय है दो दृष्टिकोण से। एक है कि चूंकि कलयुग में एक बहुत महान लक्षण है कलयुग का कि सब लोग उपद्रुत, सबके मन में सदैव अनेक उपद्रव आते, तो मन तो सिर्फ भजन में लगाना कठिन है। इसलिए श्रील प्रभुपाद इनके शिष्यों को चेतावनी दी एक बार वो वृंदावन में जो वो महोत्सव के लिए आए थे पाश्चात्य देशों से। श्रील प्रभुपाद सबको बताए कि तुम लोग यदि सोचते है कि पाश्चात्य देशों में प्रचार का प्रयास चढ़ के तुम साधु बाबा राधा कुंड निवासी बन सकते हो तो ऐसे ही सोचना तुम्हारा आधा पतन का कारण होगा। ऐसे यदि कहते हुए बाबा जी बन जाएगा तो हरे कृष्ण माला करके मन में केवल कनक कामनी का चिंतन आएगा और कुछ नहीं, और उससे पतन होता है। तो एक बात है कि हमारा मन वो इतना ज्यादा दूषित रहते कि हम योग्य नहीं है केवल भजन करने के लिए। और दूसरी बात है कि हम ब्रह्मांड भ्रमते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, हम असीम भाग्य से अवसर मिला कृष्ण भक्ति करना गुरु और कृष्ण की कृपा से, तो हमें गुरु और कृष्ण का आदेश के अनुसार कुछ करना चाहिए जिससे और भी लोग वैसे भाग्य मिलेगा। चैतन्य महाप्रभु का आदेश है, जारे देकर थारे कहो कृष्ण उपदेश, अमर आज्ञा गुरु है या थारो ए देश। हमारा सभी जो बहुत बड़ा भाग्य से अवसर मिला कृष्ण भक्ति करना, तो हमारा कर्तव्य है प्रयास करना दूसरों को कृष्ण भक्ति देना। सबका सबका गुरु होना चाहिए। तो सब लोग तो महान आचार्य नहीं होंगे, लेकिन सब मानव का कर्तव्य है गुरु होना। जैसे शास्त्र में बताया गया है कि पहला गुरु है माता, पिता नहीं माता। तो माता तो संतानों को सिखाते हैं, पहले वो कैसे, वो सब कुछ सिखाते हैं, कैसे हाथ से भोजन लेना वो सब सिखाते हैं, और उसके अतिरिक्त और भी सिखाना चाहिए भगवान कृष्ण के बारे में। तो छोटे बच्चे तो गहरा शास्त्र ज्ञानी नहीं हो सकते, कुछ है प्रहलाद महाराज जैसे बड़ा विद्वान थे बचपन में भी, परंतु कम से कम यही सिखाना चाहिए माता बच्चे को, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम, कीर्तन करना, वो साधु जन के चरणों में प्रणाम करना, भगवान में विश्वास रखना, तो ये सब सिखाना चाहिए। तो सब जो माता पिता वो सब का कर्तव्य है गुरु होना। गुरु न सस्यत् स्वजनो न सस्यत् पिता न सस्यत् जननी न सस्यत् दैवं न तत्स्यत् न प्रतिष्ठत् नमोच्यद्या समुपेत मृत्युम्। ऋषभ देव का उपदेश है कि गुरु मत हो, माता मत हो, पिता मत हो, पति मत हो, किसी से किसी प्रकार का समान ग्रहण मत करो, यदि आपके शिष्यों बच्चे जन्म मृत्यु चक्र से उद्धार नहीं कर सकते। तो बहुत भारी कर्तव्य है ने? तो कैसे वो कर्तव्य पूर्ण करना है, कैसे वो बच्चे को बताए क्या, वो ध्यान करो एक जगह में बैठ के ऐसा ध्यान करो, बच्चे के लिए संभव है क्या? छोटे बच्चे, तो छोटे बच्चे तो बंदर जैसे है नहीं, ऐसे है नहीं। तो जितने भी बच्चे को बताना ऐसे बैठो शांत हो, तो शांत नहीं होगा। तो लेकिन बच्चे तो कीर्तन में आरती में लगा सकते, और यही श्रेष्ठ योग है। ये व्यवहारिक भी है नहीं, संभव है कुछ दुर्लभ लोग के लिए संभव है ऐसे निर्विशेष ध्यान करना, बहुत कठिन है। किंतु जैसे गीता में भगवान कृष्ण ने कहा क्लेशो अधिकतर शाम अव्यक्त आसक्त चेत शाम, अव्यक्त ही गति दुखम देहवत भीरवाप्यते। अव्यक्त के ऊपर ध्यान करने से कुछ लोग सिद्धि प्राप्त कर सकते, लेकिन बहुत कठिन पथ है। और जो वैसे सिद्ध होते निर्विशेष मार्ग में वो पूरे सिद्ध नहीं होते। यही नहीं रविंद्राक्ष विमुक्त मानन स्वयस्त भावाद अविशुद्ध बुद्ध आरोह्य कृच्छ्रेण फलंग फदंग तथा फतंत्य अनाजृत युष्मदंग। ब्रह्मा जी इस प्रकार भगवान कृष्ण के चरण पर स्तुति अर्पण करते कहते कि हे अरविंदक्ष, Kamalnayan, Shri Krishna, kuche adhyatmik vadyo, jo apne ko vimukt, purnamukt mante, lekin ve vimukta mani hai, pura, vastav me purnamukt nahi hai, lekin aise sochte, main brahmalin hoon, jivan mukt hoon, aise sochte, परंतु चूंकि वे आपके अरविंदाक्ष कृष्णा के चरण पर आदर नहीं रखते अनादर करते इसलिए तो मुक्त होते हुए भी परम पद प्राप्त होते हुए भी तो वो स्थिति से फिर पतित होते मतलब वो मुक्ति जो बहुत कष्ट से Aruhya Krich Reina, Krich, Krich Sadhana Kar. Krich ka matlab bahut kathin aur dukhprad sadhana karne se ve upar jate, lekin waha sthayi sthiti nahi milti hai. Waha se patit hoti hai. Kyon? Kyon ki yehi dosh hai. Krishna ke charan ke adar nahi karte hai. तो क्या है वो मन को निकालना वो ही प्रयास बहुत कठिन है और वो प्रयास में एक सिद्धि प्राप्ति होती हुई सिद्धि का मतलब कुछ समय में कुछ लोग तो मन को पूरा निग्रह कर सकते ये निग्रह शब्द ये श्लोक में आता है दमन कर सकते परंतु वो तो नहीं रहेगा और भक्तों क्या कहते हैं उनका मन कृष्ण की सेवा में लगाते हैं उस प्रकार मन शुद्ध होते हैं जैसे श्रील प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद तो भगवान के अपने दूत है प्रतिनिधि है और साधारण दृष्टि में वे एक व्यापारी थे निवृत्त होने के पहले संसारी थे तो पहले श्रील प्रभुपाद वो व्यापार जो किए थे वो संसार परिवार का पालन पोषण के लिए और बाद में वो व्यापार जो किए थे वो बैक टू गॉडहेड पत्रिका छपाना प्रकाशन करने के लिए था तो एक प्रयास है इंद्रिय सुख के लिए और दूसरा प्रयास है भगवान कृष्ण का सुख के लिए तो लोग जो सब कुछ जो कहते हैं इंद्रिय सुख के लिए और वो प्रयास को शुद्ध बनाना चाहिए मतलब वो उद्देश्य परिवर्तित होना चाहिए वो सब कुछ जो हम कहते हैं तो हम कहते हैं इंद्रिय सुख के लिए और ये थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहिए तो सब कुछ भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए वो सब करना चाहिए तो ये मंदिर का उद्देश्य वो है एक उद्देश्य है भगवत तत्व ज्ञान परिवेशन करना सिखाना और एक मंदिर का एक मुख्य अर्थ है तो सभी पुण्यशाली लोग को अवसर देना भगवान की भक्ति में अंश ग्रहण करना तो जो केवल भगवान का दर्शन करने के लिए आते हैं तो उससे बहुत कल्याण मिलते हैं क्योंकि उन सब कुछ जो हम देखते हैं सुनते हैं स्पर्श करते हैं तो सभी प्रकार के इंद्रिय चालन से वो मन में संस्कार आते हैं सब कुछ जो हम देखते हैं उससे मन में संस्कार आते हैं और रहते हैं संस्कार शब्द का वो ही अर्थ है तो भगवान का दर्शन तो एक बार करके भी तो मन में संस्कार होगा और उससे हमारा परम कल्याण का मार्ग में प्रवेश होते हैं एक बार भगवान का दर्शन लेने से लेना वो तो बहुत बड़ा कल्याण का कारण है तो इसलिए वो मंदिर से भगवद गीता का प्रचार भी होना चाहिए, क्योंकि लोग तो अज्ञानी है, नहीं जानते और सोचते कि हम साईं बाबा मंदिर जाएंगे उससे आध्यात्मिक लाभ होगा या भौतिक लाभ, भौतिक लाभ के लिए लोग जाते हैं, आध्यात्मिक लाभ के लिए तो उससे फायदा होगा, ऐसे ही सोचते नहीं सोचते कि साईं बाबा को मानने से वो पुण्य जो मिलते वास्तविक भगवान श्री कृष्ण से वो नहीं मिलते, वो विपरीत होते, क्योंकि साईं बाबा को भगवान मानना अपराध होते। एक साधारण व्यक्ति को भगवान समान जैसे मानना तो अपराध होते। तो ये मंदिर का उद्देश्य है सबको अवसर देना, जिससे उनकी सब इंद्रियों भगवान की सेवा में लगाना हो, और विशेषकर यहाँ से भक्ति तत्व ज्ञान, भगवत तत्व ज्ञान परिवेशित होना चाहिए, जिससे लोग समझ लेंगे तो ऐसे जीवन बीतना चाहिए कृष्ण की भक्ति में। और कृष्ण ही की भक्ति में हमें सब इंद्रियों लगाना चाहिए, तो ना ही शिव, शिवानी, इंद्र, इंद्राणी, साईं बाबा, नहीं कृष्णा, कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। हम किसी देवता को असमान नहीं करते, सबको समान करते, लेकिन सबकी मूल है, सबके प्रभु है कृष्ण। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुंदन्ति देव्याय स्तवाय, सब बड़े बड़े देव देवियों कृष्णा की स्तुति करते। कृष्णा भगवान है, स्वयं भगवान कृष्ण एकल ईश्वर। द्वितीय नंदात्मज रसिक शेखा, यही कृष्ण है। हरे कृष्ण। किसी का प्रश्न हो तो जोर से पूछे। विशेषकर यही कथा के बारे में, इस विषय, यही विषय पर
मन को
मन वश वशीभूत हो जाएगा। नहीं, मन तो कृष्ण की सेवा में तन्मय होगा, हमारा प्रयास मन को वशीभूत करने वो हमारा प्रयास नहीं है। मन तो कृष्ण की सेवा में अर्पित होने चाहिए। सवाई मन कृष्ण पदार विंद, मन तो मानस देह हो गए हो जो किचु मोर आपिलुंतु पदे नंद किशोर। हम स्वयं मन का नियंत्रण का प्रयास नहीं करते, हम मन कृष्ण को अर्पित करते। हे भगवान, आप नियंत्रण कीजिए वैसे। इसलिए भगवान कृष्ण का नाम है ऋषिकेश। हमारे लिए संभव नहीं है अपना मन नियंत्रण करना, कृष्ण के लिए संभव है। इसलिए मन कृष्ण को अर्पण करने चाहिए, और वो प्रयास में स्वयं का बल से मन अपने वश में लाएगा, वो तो संभव नहीं होगा। प्रश्न तो नहीं पूछे, फिर भी उत्तर मिले। आत्मवश विधे आत्मा, आत्मवश वो शब्द गीता में आते हैं। बट स्पीक इन हिंदी प्लीज, क्योंकि कथा हिंदी में चलते है, कभी कभी मन भयभीत होते। और क्या कहना चाहिए उसी समय? हरे कृष्ण कहना, कृष्ण 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 रक्षा माम, Bajahu Raymana Sri Nanda Nandana Abhay Abhay Charanaravindare. Yehi uttar hai. Iske baare mein jyada bolna ka zarurat nahi. Spasht hai.
सोने के टाइम कृष्ण भावना भक्ति से सो के आप सो जाते हैं और आप बोल रहे हैं कि
मैं ध्यान
में नहीं हूँ तो
नहीं ऐसा बोला नहीं कि वो जो ध्यान करते हैं तो नींद आते हैं
ऐसा आ जाती है ध्यान ध्यान करते करते नींद आ जाती है हम सो जाते हैं फिर जैसा हमारी नींद में से थोड़ा वापस आता है
समाधि समाधि है कृष्ण का स्मरण करना
तो
जागरण में नींद में वो अच्छा है या यदि नींद में भगवान का स्मरण आता है उसलिए तो जागृत अवस्था में अभ्यास करना चाहिए तो पहले आप वैसे ही किसी फिर मन में भगवान कृष्ण आएंगे नींद में भी हाँ लेकिन जो वैसे ध्यान करते है तो नींद नींद आने के बाद तो कृष्ण का स्मरण नहीं करते रिलैक्स ऐसे शून्य मानस वो तो लगभग संभव कैसे आप कभी भी प्रयास किए वैसे मन को शून्य ओह रियली हाँ हाँ स्वप्न नहीं नहीं होते तो वो समाधि है हाँ लेकिन वो होते हैं लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो कि नींद में तो कोई इच्छा प्रकट नहीं होते उसका मतलब नहीं है कि मन में इच्छा नहीं है बहुत है सूक्ष्म रूप में सुप्त रूप में असंख्य इच्छाएं मन में है इसलिए पुनरापि जननम पुनरापि मरणम बार बार जन्म लेने हैं जिससे वो अपूर्ण इच्छाएं की पूर्ति करने का अवसर मिलता है तो ऐसा नहीं है कि यदि नींद में कोई इच्छा प्रकट नहीं होते कि वो सब इच्छाएं बंद हो गया अगर ऐसा ही था तो जागृत होने के पश्चात भी कोई इच्छा नहीं रहती